समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और जानेंगे कि आज हमारे संवाददाताओं के पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनिता आनंद। अनिता, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा on 100.1 FM. For all of you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. And we begin with the news headlines first. Sir Firozi.
जी बिल्कुल अनीता। बिहार में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। जनता दल यूनाइटेड विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक आज होने की संभावना।
One killed and more than 10 feared trapped in a mine cave-in in Uttar Pradesh's Sonbhadra district.
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए।
US cuts tariffs on several food items including those imported from India.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज मनाया जा रहा है।
World Boxing Cup Finals begin in Greater Noida in the National Capital Region.
और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को हराया।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we'll talk about the National Press Day. An independent and free press is one of the four pillars of a strong democracy. It plays a crucial role in shaping public opinion, driving development and holding power to account. As a powerful tool, Sarfirozi, for progress, it is essential that the press remains free from bias and upholds its duty to inform and educate the masses. For years, the media has been at the forefront, safeguarding the interests of millions and fostering transparency. To recognize its vital contributions, National Press Day is celebrated every year on November 16th, honoring the essential role of a free and responsible press in our society.
बिल्कुल अनीता, और श्रोताओं को थोड़ा सा बैकड्रॉप देते चले राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है। 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया और इसके बाद एक नया अधिनियम बनाया गया। इस नए कानून के अंतर्गत 1989 में भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित भारतीय प्रेस परिषद की पहली भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि प्रेस बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखे। परिषद का विचार सबसे पहले 1956 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया था।
And Sarfirozi, India's vibrant media landscape continues to grow. Registered publications have risen from 60,143 in 2004-2005 to 1.54 lakh in 2024-25, reflecting the expanding reach and strength of the press. This day symbolizes a free and responsible press central to democracy. It is commemorated through various activities, including the National Awards for Excellence in Journalism and the release of a souvenir. The National Award for Excellence in Journalism honors outstanding contributions in the print media. Presented annually on the National Press Day, these awards recognize exceptional journalists across various fields, with the prestigious Raja Ram Mohan Roy Award serving as the highest honor. India's media governance framework comprises a robust set of institutions, laws and initiatives designed to safeguard press freedom, strengthen ethical journalism, modernized regulatory processes and support media professionals. And Sarfirozi, from statutory bodies like the Press Council of India and the Press Registrar General of India to landmark reforms such as the PRP Act 2023 and the Digital Press Seva Portal, along with dedicated training institutions and welfare schemes, this ecosystem collectively upholds the integrity, accountability and development of the country's media sector.
जी बिल्कुल अनीता, और भारत जैसे देश की पूरी दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सेलिब्रेट करती है, और भारत में प्रेस ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और युगांतर जैसे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, और स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि समाचार हमेशा निष्पक्ष रहे। ये जिम्मेदार लोगों की आवाज उठाता रहा और ये सुनिश्चित करता रहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे।
एब्सोल्युटली। मीनवाइल यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन अटेंडेड द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली टुडे। The event was also attended by Chairperson of Press Council of India, Justice Ranjan Prakash Desai. Talking to media, Mr. Vaishnav said that press has a very important role to play in our democracy. He also congratulated all the media fraternity on the occasion. Addressing the gathering during the event, Justice Ranjan Prakash Desai said that journalism demands integrity, perseverance and constant commitment to bring accurate information to the public. Ms. Desai added that journalism is not merely a profession, it is a pursuit for truth and a job that requires courage.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन जागरूकता में इसके योगदान पर जोर देता है। और अनीता, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, साथ ही डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टल जैसी ऐतिहासिक पहलों के साथ सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक और सरल बना दिया है, जिससे प्रकाशकों के लिए व्यवसाय करना आसान हो गया है।
करेक्ट। Press Council of India and Press Registrar General of India's continued efforts to uphold ethical journalism, promote inclusivity and engage internationally reinforce India's commitment to a vibrant media ecosystem. This day serves as a reminder of the enduring importance of press freedom in strengthening democracy and empowering citizens. National Press Day 2025 stands as a tribute to the media's unwavering dedication to informing and educating the nation.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं देश की परिक्रमा पर, और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है। अनीता, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं भोपाल, जहां कल समन्वय भवन में 67वां आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अत्यंत गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। देश के चुनिंदा और ख्याति प्राप्त कलाकारों ने इस सम्मेलन में अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से संगीत प्रेमियों को एक अविस्मरणीय अनुभव दिया। आइए सुनते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
आकाशवाणी भोपाल द्वारा आयोजित 67वां संगीत सम्मेलन कल राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के नामी कलाकारों ने शास्त्रीय और सुगम संगीत की मनभावन प्रस्तुतियां दी। समारोह का शुभारंभ वायलिन वादक पंडित संतोष नाहर की राग बिहार पर आधारित प्रस्तुति से हुआ, जिसमें तबला संगत उस्ताद सलीम अल्लाह वाले ने दी। इसके बाद प्रसिद्ध गायक डॉक्टर दीपाली वात्तल ने गजलों और कश्मीरी लोकगीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिन्हें श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम में प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। आकाशवाणी भोपाल के स्टेशन प्रमुख एवं उप महानिदेशक यशवंत चिवंडे ने बताया कि आकाशवाणी का उद्देश्य श्रोताओं को श्रेष्ठ संगीत अनुभव उपलब्ध कराना और कलाकारों को गरिमामय मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख राजेश भट्ट सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से Vipin Mishra.
And now from Bhopal we go over to Kohima, where the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman was recently on an official visit to Nagaland. On her three-day visit, the Finance Minister covered Kipire, Kohima and Dimapur, spotlighting the state's aspirations and center's development efforts. We have a report from our Kohima correspondent.
At a primary stop in Khipri, one of India's 112 aspirational districts, Finance Minister Nirmala Sitharaman visited the district hospital, handing over medical equipment under State Bank of India's CSR initiatives. She also flagged off bike ambulances aimed at strengthening last-mile healthcare. Another highlight was the inauguration of the new Industrial Training Institute in Khipri, where she handed over 9 lakh rupees from SBI's CSR funds to support skills training for local youth. Later, at a credit outreach program, Ms. Sitharaman virtually inaugurated 9 bank branches across the Northeast and handed over sanction letters for various central schemes, disbursing more than 28 crore rupees to 350 beneficiaries. She underscored the government's focus on the Northeast as a crucial driver of India's growth.
Of sustained commitment, you find 3,613 projects worth over 44,800 crores have been sanctioned in the region. 974 industrial units have been registered in the Northeast, and 10 new greenfield airports have been built in the last 11 years. 4,136 crores have been allotted for the development of hydro projects.
In Kohima, the union minister launched the Samart portal at Nilit, focused on nurturing students in AI, robotics and digital hardware. She also met with Chief Minister Nipyo Ryo and cabinet ministers to review the Special Assistant to States for Capital Investment Scheme and launched a prefab multipurpose hall in Pak District and a guest house for administrative officers in Tuneboto District under the scheme. On the final day of her visit, Ms. Sitharaman inaugurated the AI Center for Excellence for Skilling at the Nagaland Tool Room and Training Center in Dimapur, reinforcing the state's push toward future-oriented skills. Throughout her visit, the finance minister stressed the importance of investment, CSR, and financial inclusion in Nagaland, emphasizing the government's commitment to bring more economic opportunities and infrastructure to the state. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
और अनीता, अब कोहिमा से अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं जयपुर, जहां मध्य प्रदेश से जल्द ही बाघों को लाया जाने वाला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है और बाघों के इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
हड़ौती का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी अब परदेसी बाघों का भी आशियाना बनने जा रहा है। वन्य जीव प्रेमी इस खबर से उत्साहित हैं। ये बाघ सड़क मार्ग के जरिए लाए जाएंगे। नए मेहमानों के आने से बाघों का कुनबा बढ़ेगा। इनके लिए एनक्लोजर्स, कैमरा ट्रैप नेटवर्क, वायरलेस सिस्टम और शिकार के लिए प्रे बेस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथुसोमा सुंदरम ने बताया कि इस साल कुल 5 बाघ शिफ्ट किए जाएंगे, वहीं पहले चरण में 2 बाघ लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी माधव टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीम इसी सप्ताह मुकुंदरा में तैयारियों का जायजा लेगी, ताकि बाघों को सुरक्षित तरीके से रिलीज किया जा सके। नए बाघ आने से पर्यटन में भी इजाफा होगा। परिक्रमा के लिए जयपुर से सालेहा गाजी।
And now, Sir Firozi, we go over to Gangtok, where the 13th International Tourism Mart concluded. Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, inaugurated the Tourism Mart at Gangtok on Friday. In a video message, Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat asserted his commitment for the progress of this region in tourism. The four-day-long event witnessed fields visits of dignitaries, exhibitions and cultural events showcasing the rich heritage of the region. More from our correspondent.
The 13th International Tourism Mart concluded today at Gangtok. Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, inaugurated the 13th edition of this mart at Gangtok on Friday. Tourism ministers of Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh, along with other distinguished guests were present on this occasion. In a video message, Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat asserted his commitment for the progress of this region in tourism. Addressing the gathering, Arunachal Pradesh Chief Minister described it as a proud moment for the region and expressed gratitude to the Ministry of Tourism for its visionary initiative. He encouraged stakeholders to fully utilize the opportunities offered by the MART, noting that thematic discussions would pave the way for future collaborations. The four-day-long event also witnessed field visits of dignitaries, exhibitions, and cultural events showcasing the rich heritage of the region. It may be noted that the International Tourism Mart is a flagship annual event of the Ministry of Tourism aimed at showcasing the tourism potential of the Northeast region. to both the domestic as well international audiences. The mart highlights the diversity of the region's offerings, ranging from ecotourism and adventure tourism. The event also served as a vital platform for bringing together tourism businesses and entrepreneurs from the northeastern states to foster collaboration and interaction among buyers, sellers, social media influencers, government agencies, and other stakeholders. This year, the 13th edition of the event, also organized in Sikkim, known for its diverse Himalayan topography, rich flora and fauna, unique arts and crafts, pristine natural beauty, and sustainable way of life. For Parikrama, Manas Pratim Sharma, reporting from Gangtok.
और अनीता बाखरी परिक्रमा अहमदाबाद की भी कर लेते हैं. गुजरात में कई वस्तुओं को उनके विभिन्न विशेषताओं के आधार पर जीआई टैग मिला है. हाल ही में बनासकांठा के अंबाजी संगमरमर को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे गुजरात का गौरव और बढ़ गया है. जीआई यानी भौगोलिक संकेत किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या गांव में उत्पादित विशेष वस्तुओं को दिया जाता है जो कहीं और उपलब्ध नहीं होती. इसके अलावा उस वस्तु का एक विशेष गुण होता है और वो उस क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध वस्तु होती है. तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट.
गुजरात के बनासकांठा स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. अब अंबाजी एक और वजह से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है, क्योंकि बनासकांठा के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिल गया है. अंबाजी क्षेत्र के संगमरमर को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग से मान्यता मिल गई है, इसलिए अंबाजी संगमरमर अब कानूनी रूप से संरक्षित और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पाद बन गया है. अंबाजी संगमरमर अपनी दुधिया सफेद चमक, टिकाऊपन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. इसका उपयोग अंबाजी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों, स्मारकों और भव्य इमारतों में किया जाता है. इस जीआई टैग के मिलने से अन्य क्षेत्रों के संगमरमर को अंबाजी संगमरमर के रूप में नहीं बेचा जाएगा, साथ ही रोजगार, खनन और कारखाना क्षेत्रों में नए अवसर बढ़ेंगे, विदेशी बाजारों में विश्वास और मांग बढ़ेगी. इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों और शिल्प कला को नई पहचान मिलेगी. बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा, अंबाजी संगमरमर को दिया गया जीआई टैग आस्था के साथ साथ प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक गौरव का प्रतीक बन गया है. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से प्रवेश अड़ियचा.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान में और वहां की भी हलचल देंगे.
इंडिया इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल फ्रॉम टुडे अंटिल 20th ऑफ दिस मंथ एट द शहीद विजय सिंह पाटिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन ग्रेटर नोएडा. This event is the final stage of the 2025 World Boxing Cup series after earlier stages in Brazil, Poland and Kazakhstan. Around 130 boxers from 18 countries will compete with 8 best boxers of the year in each of the 20 categories taking part. Hosts India will compete in all 20 categories and will feature top boxers like Meenakshi Huda, Nikhat Sareen, Jasmine Lamboria and Saviti Bura.
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 124 रन के लक्ष्य के जवाब में 93 रन ही बना सकी. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई.
एंड इन टेनिस, स्पेनिश स्टार एंड 2-टाइम ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज इज सेट टू फेस यानिक सिन्हा in a much-anticipated ATP Final Championship class at Turin in Italy tonight. The match will begin at 10:30 p.m. IST. Alcaraz reached the final by defeating Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4. This marks his 11th final of the year, making him the first Spanish player to reach the ATP Finals since Rafael Nadal in the year 2013.
श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है.
16th of November is the death anniversary of 7 freedom fighters who were hanged to death for their role in the 1915 Lahore conspiracy case. They were Kartar Singh Sarabha, Vishnu Ganesh Pingle, Bakshish Singh, Jagat Singh, Suren Singh, Ishar Singh and Harnam Singh. The revolutionary and patriot Kartar Singh Sarabha was merely 19 when he was executed by the British. Kartar Singh was born on 24th May 1896 in Saraba village near Ludhiana. He completed his basic education in Ludhiana.
In 1912, he was sent to America for higher studies. Upon reaching San Francisco, an incident at the immigration office changed his life forever. He noticed that Indians were subjected to humiliating questioning, while immigrants from other countries were allowed in after bare minimum formalities. This infuriated the young boy, and he started questioning the existence of British rule in India.
When the Ghadar movement was born in 1913, Kartar Singh became one of its key members. He was made in charge of the Punjabi edition of Ghadar, the party mouthpiece. The newspaper highlighted the atrocities of the British and fueled revolutionary ideas among overseas Indians.
Soon, World War I broke out and members of the Ghadar party decided that it was time to shift base to the homeland and mobilize the countrymen. On September 15, 1915, Kartar Singh left for India. He met well-known revolutionary Rasbihari Bose in Benares and informed him of the arrival of 20,000 members and workers of the Ghadar party and plans of the revolution. Unfortunately, the British got wind of these plans and launched a massive operation to apprehend them. Several members were arrested, but this did not deter Kartar Singh from planning ahead. He went about preparing the base for the revolution in Punjab.
He focused on mobilizing Indian soldiers in the British Army to join the movement, especially cantonments of Meerut, Agra, Banaras, Allahabad, Ambala, Lahore and Rawalpindi, and simultaneously set up a small-scale arms manufacturing unit in Ludhiana. The date for revolt was set for February the 21st, 1915. A plan was made to attack cantonments of Mian Mir and Firozpur, whereas Ambala was prepared for a mutiny. Meanwhile, the British reacted swiftly and arrested a number of revolutionaries.
Kartar Singh, however, managed to evade arrest. The promised revolution did not come to fruition. Refusing to give up, Kartar Singh made a last-ditch desperate attempt on March 2, 1915 to rouse the Indian soldiers in Sangodha and incite the soldiers to mutiny. This time, a soldier got him arrested. He was sent to trial with the other members of the Ghadar party at Lahore in what came to be called the Lahore Conspiracy case. Kartar Singh and many others were tried in the Lahore Conspiracy trial in April 1915 for their roles in the February plot.
When questioned about his role, Sarabha was defiant, stating that it was his duty to get Indians to rebel against the British. Sarabha was executed at the Lahore Central Jail on 16th of November 1915. Bhagat Singh always used to keep Sarabha's photo in his pocket. India will always cherish the memory of its hero, Shaheed Kartar Singh Sarabha.
The freedom struggle hero Vishnu Ganesh Pingle, who was executed along with Kartar Singh Sarabha and five other revolutionaries, laid down his life for the motherland at the age of 26. He was born in Talegaon, Dhamdere village of Pune district on January 2, 1889. After completing his schooling, Pingle went to Washington and got a degree in electronic engineering.
During his stay in the US, he came in contact with revolutionaries such as Lala Hardial, Kartar Singh Sarabha and Pandit Kanshiram and became an active member of the Ghadar party. Pingle used his engineering skills in making bombs for the party. After coming to India, he started revolutionary activities in Punjab and maintained secret contacts with revolutionaries including Rasbihari Bose and Sachindranath Sanyal.
During World War I, the Ghadar party planned an armed uprising against the British. They arrested Pingle from Meerut cantonment on March 24, 1917 with 18 live bombs and other explosive material. He was hanged to death in the Lahore Central Jail on November 16, 1915.
And time now to remember other celebrities who are either born this day or who passed away today. And we begin this segment by remembering the American actor on his death anniversary. We are talking about William Clark Gable. He passed away on this day in 1960. The American actor, often referred to also as the King of Hollywood, he appeared in more than 60 motion pictures across a variety of genres during his 37-year-long career, 3 decades of which he spent as a leading man. Outstanding achievement of his. Gable won the Academy Award for Best Actor for his role in Frank Capra's It Happened One Night and earned nominations in the same category for portraying Fletcher Christian in Frank Lloyd's Mutiny on the Bounty, Red Butler in Victor Fleming's Gone with the Wind, released in 1939. I'm playing a snippet of a dialogue of his from this movie.
Red, where are you going?
I'm going to Charleston, back where I belong.
Please take me with you.
No, I'm through with everything here. I want peace. I want to see if somewhere there isn't something left in life of charm and grace. Do you know what I'm talking about?
No, I only know that I love you.
That's your misfortune.
आज जयंती है भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार श्रीराम लागू जी की भी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थिएटर से। अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए, 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। पिंजरा, मेरे साथ चल, सामना, दौलत, लावारिस, काला बाजार इनकी कुछ मशहूर फिल्में रही।
टुडे वी ऑल्सो रिमेम्बर एलन विल्सन वाट्सा। On his death anniversary, he passed away in 1973. On this day, was a British and American writer, speaker, and also a self-styled philosophical entertainer, known for interpreting and popularizing Buddhist, Taoist, and Hindu philosophy for the Western audience. He wrote more than 25 books and articles on religion and philosophy, introducing the Beat Generation and the emerging counterculture to the way of Zen. And one of the first best-selling books on Buddhism. In Psychotherapy East and West, he argued that psychotherapy could become the best way of liberation if it discarded dualism. He considered Nature, Man and Woman in 1958 to be his best work. He also explored human consciousness and psychedelics in his works such as The New Alchemy, released in 1958, and Joyous Cosmology, which was written in 1962.
आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु और नर्तक सम्राट शंभू महाराज जी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। लखनऊ घराने के शंभू महाराज को नृत्य कला विरासत में मिली। शंभू महाराज नृत्य के संग ठुमरी गाकर उसके भावों को कई तरह से इस अदा से प्रदर्शित करते थे कि दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते थे। तो आइए सुनते हैं उनकी एक प्रस्तुति।
Today we also remember Bommi Reddy Narasimha Reddy on his birth anniversary. He was born on this day in 1908. He was the Indian film director, producer and also the screenwriter. He was an early figure in the Telugu cinema. Many of his earlier films like Vande Mataram, Devata had Veenagaiya as the lead. Reddy was the first film personality to receive the Dada Saheb Phalke Award from South India, the highest honorary award of Indian cinema. He was awarded the India's third highest civilian honor, the Padma Bhushan, and the Doctor of Letters.
तो अनीता, क्यों ना इस मौके पर उनकी फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए।
जी जरूर।
आकाश भी थिलो आएगा ये गिरे देश देश आलन में फिर के टूटे।
और श्रोताओं, सर्द हो रहे मौसम में इलाहाबादी अमरूद की खुशबू फैलने के साथ ही एक बार फिर अकबर इलाहाबादी की याद भी ताजा हो गई है, जिनकी आज जयंती है। वो कहते थे, कुछ इलाहाबाद में समा नहीं बहबूद के, या धरा क्या है बजुज अकबर के और अमरूद के।
एंड फाइनली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी वी रिमेम्बर गुलशन नंदा, द इंडियन नॉवलिस्ट एंड स्क्रीन राइटर। मेनी ऑफ हिज मूवीज वर अडैप्टेड इनटू हिंदी फिल्म्स। We are talking about Kajal, Kati Patang, Khilona, Sharmili and Dag, to name a few. And I'm playing a snippet of a song from his film, Naya Zamana.
Kitne din aake tarsenge, kitne din yon dil tarsenge, ek din to badal barsenge, hey mere pyaare dil, aaj nahi to kal mehe ke.
Me श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनीता आनंद को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड
नमस्कार।